بالظبط. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا. اس کلاس میں سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ہم آج کل پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 83 سے 87 53 سے 87 اور ان کے معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 129 سے. تو پیج نمبر 129 کے اوپر ہم تھے، اور آخری بات جو پڑھی تھی وہ یہ فرمائی کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. خصوصیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ خاص اسی امت کو دی گئی، دوسری امتوں کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کو جو ہے وہ عمومی کہا جائے گا، عمومیات شاید، لیکن یہ خصوصیات صرف اس امت کو دی گئی. اور کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب شدید غم اور صدمہ آیا بنیامین کی خبر سن کر کے کہ بھئی وہ بھی گئے، تو انہوں نے یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا، بلکہ یا اسفہ علی یوسف فرمایا. بیہقی نے شیخ الایمان میں بھی یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی امت کی خصوصیات میں سے ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا شغف محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں تھا؟ تو بہت اہم یہاں پہ پوائنٹ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت اور ان کے گم ہونے کا اتنا اثر کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر 40 سال اور بعض کی بنا پر 80 سال بتلائی جاتی ہے، یعنی 80 سال کی دوری یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی یہ میکسیمم لمٹ میکسیمم نمبر ملتا ہے، ورنہ 40 سال کی دوری. تو اگر وہ 8 سال کے تھے یا 10 سال کے تھے تو اب جو ہے وہ 50 سال کے یوسف علیہ السلام ہو چکے تھے. اور یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے باپ ہونے کی وجہ سے ایٹ لیسٹ 20 سال تو بڑے ہوں گے ان سے، یا اس سے زیادہ، بلکہ 20 سال تو وہ تو پہلا بیٹا ہوتا ہے نا، اس سے باپ کا عام طور پر اگر 20-21 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں اولاد ہو جائے تو وہ تو سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے، یہ تو آخری بلکہ سیکنڈ لاسٹ اولاد تھے. تو یعقوب علیہ السلام کی عمر تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اتنا یعنی مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی، بظاہر ان کی پیغمبرانہ شان کے شایان نہیں کہ اولاد سے اتنی محبت کریں، جبکہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے. ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. فتنہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا، ورنہ گمراہی کے معنی میں اور فساد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فتنے کا لفظ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آزمائش کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا. مفسرین ہی بتاتے ہیں کہ یہ کون سے والی معنی میں استعمال ہوا ہے، کس جگہ کے اوپر. انبیاء علیہ السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتائی ہے ان اخلصناہم بخالصتن ذکر الدار. اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف خالص نہیں تھے بلکہ ان کو خالص کر لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو پسند فرمایا ہے. ذکر الدار کس کے لیے؟ آخرت کے گھر کی یاد کے لیے. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور وہ صفت ہے دار آخرت کی یاد. تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں कि हमने उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी है और सिर्फ आखिरत की मोहब्बत से उनके कुलूब को मामूर कर दिया है। उनका मतमाही नजर किसी चीज के लेने या छोड़ने में सिर्फ आखिरत होती है। ठीक है, यानी उनका ईमान जो है वो कामिल होता है। ठीक है, जैसे कि नबी ने फरमाया कि मन अहब्बा लिल्लाही व अबगदा लिल्लाही व अअता लिल्लाही व मनअ लिल्लाही, कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत करी और जिसने अल्लाह के लिए नफरत करी, और जिसने अल्लाह के लिए अगर दिया तो अल्लाह के लिए दिया, और अगर किसी से रोका कोई चीज तो वो भी अल्लाह के लिए रोकी, तो क्या है वो फसतक मल ईमान फकद फकद इस फकद इस्तकमल अल ईमान, तो कहते ही कि उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह के लिए करना और आखिरत के लिए करना जो है ना, ये एक ही मानी में किया जाता है। अल्लाह की मोहब्बत यानी आखिरत, क्योंकि आखिरत जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात की जगह है, तो वो दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी को आखिरत की तो फिक्र है लेकिन अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, या अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन आखिरत से मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आखिरत की मोहब्बत का मतलब अल्लाह की मोहब्बत, और ये दुनिया की मोहब्बत की नफी है, यानी जहां दुनिया की मोहब्बत होती है वहां पे आखिरत की मोहब्बत नहीं होती है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती, दोनों चीजें एक साथ दिल के अंदर जमा नहीं हो सकती। अल्लाह की मोहब्बत जो है वो बहुत कीमती चीज है और बहुत पाक साफ चीज है, और दुनिया की मोहब्बत ये इंतहाई यानी गैर कीमती चीज है और इंतहाई नापाक चीज है। तो पाक चीज नापाक चीज के साथ इकट्ठी नहीं हो सकती दिल के अंदर। ठीक है, तो अंबिया के दिलों से अल्लाह ताला ने दुनिया की मोहब्बत निकाल दी और सिर्फ आखिरत की मोहब्बत से उनके कुलूब को मामूर कर दिया। तो वो जो भी काम करते हैं ना, तकमील ईमान के साथ, आखिरत की फिक्र के साथ और अल्लाह की मोहब्बत के लिए ही करते हैं। इस मजमुए से ये इश्काल कवी होकर सामने आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का औलाद की मोहब्बत में ऐसा मशगूल होना किस तरह सही हुआ। ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, ये बड़े खास अकाबरीन में से हैं। ठीक है ना, वैसे तो आम तौर पे जो उलमाए कराम हैं और यानी मुफस्सिरीन कराम हैं, मुहद्दिसीन कराम हैं, तो उनका उनके जो मेहनत होती है, इल्म की जो खिदमत होती है ना, तो उसके अंदर एक बहुत अहम उस खिदमत का जुज ये होता है कि गलत फहमियों का जो है ना वो इजाला करना। ठीक है, क्योंकि इल्म है क्या, इल्म जो है वो दीन का यही है ना कि जी कौन सी चीज जो है वो फायदेमंद है और कौन सी चीज नुकसानदेह है। ठीक है ना, यही तो इल्म है सारा का सारा, फायदेमंद और नुकसानदेह क्या है, ठीक है, और कैसे है, चले इसके आगे जो है वो कैसे है, ये भी आप शामिल कर लें इल्म के अंदर, और क्यों है ये जो है वो और भी ज्यादा एडवांस्ड इल्म। भाई कोई चीज फायदेमंद है तो क्यों फायदेमंद है, कोई चीज फायदेमंद नहीं है या नुकसानदेह है तो क्यों नुकसानदेह है, ये लो लेवल का इल्म, ये जो है ना वो आम लेवल का इल्म नहीं है बल्कि बहुत ही खास लेवल का इल्म है कि चीजों के फायदे और नुकसान की वजह भी पता चल जाए, जिसको अंग्रेजी जुबान के अंदर ना रैशनल थिंकिंग कहते हैं, रैशनल थिंकिंग। ठीक है, वजह भी पता चल जाए। ठीक है, ये यानी आम इल्म नहीं है। आम इल्म क्या है, क्या चीज नुकसानदेह है और क्या चीज फायदा। ठीक है, इससे ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज क्या है कि कोई चीज फायदेमंद जो है वो कैसे बनती है, यानी मजीद तफसील। ठीक है ना, गोया के समझने के व्हाट से लेकर के जो है ना वो हाउ। ठीक है ना, कि उसके फायदेमंद होने की के जो है ना वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो किसी के लिए फायदेमंद बन जाती है और किस तरीके से वो चीज किसी के लिए जो है वो नुकसानदेह बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ वो हैदराबादी वाला हाउ नहीं बल्कि इंग्लिश वाला हाउ, सही है। तो ये ज्यादा एडवांस नॉलेज है, और फिर जो सबसे एडवांस नॉलेज है वो है वाई, वाई ठीक है, अंग्रेजी वाला, उसको रैशनल थिंकिंग भी कहा जाता है। रैशनल यानी रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ समथिंग बीइंग बेनिफिशियल एंड समथिंग बीइंग नॉन बेनिफिशियल या हार्मफुल। अब जो है ना वो मजे की बात यह है, क्या है मजे की बात, आपको भी बताएं, थोड़ी देर पहले ये चीज एक किसी से बात हुई तो सामने आई। वो क्या है कि ये जो नॉलेज है ना, वाई रैशनल थिंकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जो कि सबसे यानी एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज है कि भाई कोई चीज हराम है तो क्यों हराम है, कोई चीज हलाल है तो क्यों हलाल है, सही है। तो और बाकी दीन के अहकाम अगर जो हैं तो वो क्यों हैं ऐसे दीन के अहकाम, सही है। तो ये वाली जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज जो है वो कहाँ पे पढ़ाई जा रही है आजकल, और किन लोगों को पढ़ाई जा रही है आजकल, ये नॉलेज जो है वो हमारी मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, यानी सेक्युलर नॉलेज की यूनिवर्सिटीज के अंदर, सही है। और किसको पढ़ाई जा रही है, यानी जो तकरीबन बाहों में बाहें डाल करके खवातीनों हजरात बैठे होते हैं सामने, ठीक है ना, बल्कि यूनिवर्सिटीज के हालात जो वहां के जाने वाले लोग आजकल बता रहे हैं, वो गोदों में सर रख करके बैठे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, और हर किस्म के उनके आपस के ताल्लुकात होते हैं, और जो है वो वहां पर यानी शरीयत और सुन्नत क्या चीज होती है, राइट, वहां पर जो है ना वो रैशनल थिंकिंग, व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाई इज इस्लाम एंड व्हाई जो है ना वो समथिंग इज लाइक दैट इन इस्लाम एंड समथिंग इज लाइक नॉट लाइक दैट इन इस्लाम, ठीक है। अब कोई बाहर से अगर देखे, और हम खुद जब हमने खुद जो है ना ये सारी थोड़ी सी तफसील पढ़ी ना, अरे सर यार क्या जबरदस्त, माशाल्लाह क्या काम हो रहा है, ओहो दीन की खिदमत जबरदस्त है ना, मुमलकत खुदादाद के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना वो यानी कुरान मजीद की तफसील और हदीस मुबारक और तफसीर कुरान और हदीस की जो है वो इसनाद क्या होती है और ये किस किस्म की हदीसें होती हैं और सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये तो बड़ा दीन की खिदमत हो रही है, जिसको के क्या कहा जाएगा, दीन है? तो पुराने साथी हैं कुछ सुनते रहते हैं सोचे से, तो इसको क्या कहते हैं कि जब यूनिवर्सिटियों के अंदर भी दीन की इतनी सारी जो है वो तालीम दी जानी शुरू हो जाए तो इसका क्या मतलब, क्या कहेंगे उसको हमारे जी, के दीन गालिब आ चुका है, राइट, दीन गालिब आ चुका है। चंद साल पहले तो वो गाना वो गा रहे थे, गाना नहीं ना तो नगमा नगमा पढ़ रहे थे, दीन गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा, अरे भाई आ चुका गालिब, राइट, मिर्जा गालिब, दीन गालिब आ चुका है, ठीक है। तो बस कितनी जबरदस्त बात है ना, तो यानी समथिंग टू बी वेरी इंप्रेस्ड अबाउट, ठीक है कि भाई आप सही। तो भाई ऐसे ही लगता है कि भाई दीन गालिब आ चुका है और हवाएं वगैरह सारी की सारी चल चुकी हैं और जो है ना वो सब जो है वो ठीक हो चुके हैं और बस अब तन दिनों के अंदर जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और उसके बाद जो है ना वो इट विल बी पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन सी वाली पैराडाइज ऑन अर्थ, कहीं वो जेहोवाज विटनेस वाली पैराडाइज ऑन अर्थ ना हो जाए कहीं, है ना भाई, जेहोवाज विटनेस वाली के वो ईसा अलैहिस्सलाम जो आए ना वो असल में तो कोई और थे, वो जेहोवाज विटनेस वाले भी तो कहते हैं, ये ईसाइयों की एक सेक्ट है जेहोवाज विटनेस, वो भी कहते हैं जी जीसस क्राइस्ट विल कम बैक, वो या रीइनकार्सिनेटेड जो भी है दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और जो है ना वो इट विल बी पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है, क्या वो वाली वही वाले ईसा अलैहिस्सलाम जो ऊपर आसमान के ऊपर हैं दूसरे आसमान पे वही वापस आ रहे हैं, उनके वापस आने के लिए तो भाई जेहोवाज विटनेस वाली हदीसों की बजाय जो है ना बाइबल की नरेशन के बजाय नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को लेना पड़ेगा ना, क्या नहीं लेना पड़ेगा, क्या ख्याल है, नहीं लेना पड़ेगा नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो वापस आएंगे तो क्या सिर्फ वो वापस आएंगे और कुछ नहीं होगा दुनिया के अंदर, दज्जाल वज्जाल कुछ नहीं होगा फिर, राइट, दज्जाल जो है वो उसका फैसला लगता है वापस ले लिया गया है, नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, है ना, कि दज्जाल के आए बगैर ही ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब तो दीन गालिब आ चुका है, दीन तो गालिब आ चुका, अब दज्जाल आकर के कैसे इसको मगलूब करेगा, इस दीन को जो है वो दीन वालों को जो है वो मुसीबत में कैसे मुब्तला करेगा, इतना तो गालिब आ चुका, सब कुछ जो है ना वो माशाल्लाह जबरदस्त हो रहा है, तो दज्जाल का तो रोल ही खत्म हो गया फिर उसके बाद, राइट, हम इसी चक्कर में आजकल दज्जाल का रोल ही खत्म कर चुके हैं, सही है। तो भाई रैशनल थिंकिंग, उसके लिए कुछ बेस चाहिए है, उसके लिए कुछ जो है वो बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए जो है वो कुछ आपका इस्लाह विस्लाह नहीं चाहिए, कुछ तज़किया नफ्स नहीं चाहिए, कोई तस्फिया तलब नहीं चाहिए, कोई तरबियत नहीं चाहिए, कोई अपने नफ्स की एनाइहिलेशन नहीं चाहिए, उसके बगैर ही जो है वो रैशनलाइजेशन ऑफ द दीन। सही। तो जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह है ना, तो ये एक खास दौर के इमाम, एक खास दौर के आलम दीन, ये पुराने वक्तों के आलम दीन नहीं है, ठीक है ना। जिस वक्त जो है ना वो दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुक्मरानी थी, कॉलोनियलाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, ये उस जमाने के आलम दीन नहीं है, ये इस जमाने के आलम दीन है। कौन सा जमाना? फितने दज्जाल का जमाना, ठीक है ना। और जो फितने दज्जाल के जमाने का आलम दीन होता है ना, उसकी अप्रोच काफी मुख्तलिफ होती है, बल्कि मुख्तलिफ से मुराद ये कि वो उसका फोकस एरिया जो है वो कुछ और है, उसका फोकस एरिया कुछ और है, ठीक है ना। एक होता है ना प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, टर्शरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस एरिया क्या है? फितने दज्जाल का सद्देबाप करना, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप फितने दज्जाल के दौर में रह रहे हैं और आप जो है ना वो आज से 600 साल पुराने फितनों के बारे में वो उसी को आपने नंबर वन फोकस बनाया हुआ है ना। जो आज के दौर का नंबर वन फोकस है उसको जो है वो आप टच ही नहीं करते उसके ऊपर। सही है। जिन हजरात ने नारा लगाया कि दज्जाल कोई शख्सियत नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक इंसानियत का निजाम होगा जिसका मुकाबला किया जाएगा, वो भी लगता है साजिश का शिकार होकर ऐसी बातें करते हैं। इस तरह तो तमाम इंसानियत को किसी एक गलत पर मुत्तहिद करना आसानी होगा। तो निजाम होगा, दज्जाल एक इंसान नहीं होगा बल्कि निजाम होगा। पहली बात तो ये इसके अंदर जो है वो हदीस का इनकार ही है, ठीक है, क्योंकि हदीस के मुताबिक तो जो है वो एक बाकायदा एक मखलूक है, तो इंसान और जिन के, ये भी एक है भाई वो माँ उसकी जिन थी और जो है वो बाप इंसान था वगैरह। तो हदीस का इनकार करते हैं तो फिर इनकार करने वाले तो फिर पूरा भर पेट करके इनकार करेंगे ना हर चीज का, वो उसके डायरेक्ट वो ऐसे खाम खाम तो इनकार नहीं करते ना, उसके बड़े गहरे एजेंडे होते हैं, फिर उसके गहरा मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, जहां पर ऐसा कोई भी मुकाम आता है ना कि जिसके अंदर जो दीनी शख्सियात हैं उन शख्सियात के बारे में शैतान कोई बदगुमानी पैदा कर सकता है, गलतफहमी पैदा कर सकता है, तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह उसको जाने नहीं देते उसको, और खुल करके उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं और उसके सारे जो जहनी अगलात हैं उनकी जो है वो नफी करके साबित करते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि औलाद की मोहब्बत में ऐसा मशगूल होना किस तरह से सही हुआ, तो हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मजहरी में इस इश्काल को जिक्र करके हजरत मुजद्दद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की एक खास तहकीक नकल फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि बिला शुबा दुनिया और मताए दुनिया की मोहब्बत मजमूम है, कोई शक नहीं है इस बात के अंदर, दुनिया की मोहब्बत मताए दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया व माफीहा जो कुछ उसके अंदर है वही मताए दुनिया है, तो उसकी ये मजमूम बात है, काबिल मजम्मत है। कुरान और हदीस की नुसूस बेशुमार इस पर शाहिद हैं, मगर दुनिया में जो चीजें आखिरत से मुतअल्लिक हैं उनकी मोहब्बत दर हकीकत आखिरत ही की मोहब्बत में दाखिल है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमालात सिर्फ हुस्न सूरत ही नहीं बल्कि पैगंबराना इफ्फत और हुस्न सीरत भी है, इस मजमूए की वजह से उनकी मोहब्बत किसी दुनियावी सामान की मोहब्बत नहीं थी बल्कि दर हकीकत आखिरत ही की मोहब्बत थी, इंतहा यानी इलल आखिर। तो यानी मोहब्बत बराए आखिरत, मोहब्बत बराए दुनिया नहीं, ठीक है, अगरचे के बजाहिर एक दुनिया की चीज है, लेकिन अब नबी अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मोहब्बत थी ना, तो भाई बीवी की मोहब्बत, राइट, तो बीवी की मोहब्बत, तो बीवी तो बहुत बड़ी जो है वो दुनिया वाली चीज जो है वो बन सकती है किसी इंसान के लिए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें भी जो थी वो आखिरत की खातिर थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो बेटे की मोहब्बत यहाँ पर है, और यहाँ ये बात भी काबिले नजर है कि ये मोहब्बत अगरचे दर हकीकत दुनिया की मोहब्बत नहीं थी मगर बहरहाल इसमें एक हैसियत दुनियावी भी थी, एक हैसियत, एक एंगल, एक जो है वो जहत इसकी दुनियावी भी थी इसी वजह से, यानी ये समझ लें कि जैसे बिल्कुल ये काबतुल्ला तो नहीं है ना, ये या कुरान मजीद तो नहीं है ना, अगरचे काबतुल्ला भी दुनिया के अंदर मौजूद एक चीज है और कुरान मजीद का मसहब जो होता है वो भी दुनिया के अंदर मौजूद एक चीज है, लेकिन वो कहा जाएगा कि नहीं इसकी मोहब्बत और काबतुल्ला की मोहब्बत या नबी की मोहब्बत जो है ना, ये तो यानी जो आपके सामने आपका शेख है ठीक है, या जो सहाबा के सामने जो है नबी अलैहिस्सलाम होते थे, तो वो तो जी खालिसतन आखिरत की मोहब्बत होगी ना, कि शेख के साथ मोहब्बत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की वजह से होती है, उसके अंदर जो है वो दुनियावी मोहब्बत का कोई एंगल नहीं होता, कोई शायबा नहीं होता। लेकिन औलाद के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, बीवी के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, उसके अंदर तो दुनियावी भी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। तो वही फरमा रहे हैं कि इसमें एक हैसियत दुनियावी भी थी, इसी वजह से ये मोहब्बत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इब्तिला और इम्तिहान का जरिया बनी, और 40 साल की मुफारकत का नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, और इस वाकये के अज्जा अव्वल से आखिर तक इस पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला ही की तरफ से कुछ ऐसी सूरतें बनती चली गईं कि ये सदमा तवील से तवील होता चला गया, वरना वाकये के शुरू में इतनी शदीद मोहब्बत वाले बाप से ये मुमकिन ना होता कि वो बेटों की बात सुनकर घर में बैठे रहते, बल्कि मौके पर पहुंचकर तफ्तीश व तलाश करते तो उसी वक्त पता चल जाता, यानी उस मौके पे जाना, भी लेके चलो मुझे, कहाँ पर तुम लोग जो है वो आपस में रेस कर रहे थे, कहाँ पर तुमने सामान रखा था, मुझे दिखाओ वो जगह जहाँ पे जो है वो भेड़िए ने यूसुफ के ऊपर हमला किया था, है जमीन के ऊपर भी तो ये कमीज के ऊपर खून लगा हुआ था, तो जमीन के ऊपर एक कतरा भी नहीं गिरा होगा खून का, जमीन के ऊपर खून का कोई निशान नहीं होगा, तो अगर तहकीक करते तो बड़ी आसानी से इनकी चोरी पकड़ी जाती ठीक है, लेकिन घर में बैठे रहे, बल्कि मौके पर पहुंचकर तफ्तीश व तलाश करते तो उसी वक्त पता चल जाता, मगर अल्लाह ही की तरफ से ऐसी सूरतें बन गईं कि उस वक्त यह ध्यान ना आया, यानी जहन ही उस तरफ नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि भाई यानी ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा होता, तो ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, हत्ता के वक्त के नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा मामला हो सकता है, और हुआ है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बजरिए वही इससे रोक दिया गया कि वो अपने हाल की अपने वालिद को खबर भेजें, यहां तक कि मिस्र की हुकूमत व इख्तदार मिलने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं फरमाया, और इससे भी ज्यादा सब्र आजमा वो वाकयात थे जो बार बार उनके भाइयों के मिस्र जाने के मुतालिक पेश आते रहे, उस वक्त भी ना भाइयों पर इजहार फरमाया ना वालिद को खबर भेजने की कोशिश फरमाई, बल्कि दूसरे भाई को भी अपने पास एक तदबीर के जरिए रोक कर वालिद के सदमे को दोहरा कर दिया, डबल कर दिया। ये सब चीजें यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बरगुजीदा पैगंबर से उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उनको बजरिए वही उससे ना रोक दिया गया हो, इसीलिए कुर्तुबी वगैरह मुफस्सरीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सारे अमल को वही खुदाबंदी की तलकीन करार दिया है, यानी इमाम कुर्तुबी ने भी और दूसरे मुफस्सिरीन ने भी, कि भाई वही की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा सब कुछ किया था, वरना तो वही के बगैर इंसान जो है ना वो इस किस्म का कि किसी को अजियत पहुंचाना, हत्ता कि अपने बाप को और वक्त के नबी को अजियत पहुंचाना, ये जायज नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का ही हुक्म आ जाए तो भाई सब अल्लाह ही का तो हुक्म है, तो अल्लाह जब कहते हैं किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, तो वहीं पर अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए कि किसी को तकलीफ पहुंचाओ, यानी जिस्मानी तकलीफ नहीं बेशक यहाँ पे रूहानी तकलीफ थी या नफसियाती तकलीफ थी, तो वही तो अल्लाह ताला का हुक्म ही तो है ना, तो सब कुछ ही अल्लाह के हुक्म पर है महफूज, तो ये सब जो है ना वो वही खुदाबंदी की तलकीन ही फिर मुफस्सिरीन ने फरमाया। और कजाले का किदना ली यूसुफा के कुरानी इरशाद में भी इस तरफ इशारा मौजूद है, वल्लाहु सुभानहू व तआला आलम। तो इतने बड़े मुफस्सरीन जो हैं वो रैशनली इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर भी आखिर में कह रहे हैं वल्लाहु सुब्हानहु तआला आलम, अल्लाह ताला ही ज्यादा इल्म। कालू तल्लाही तफ्तऊ तस्कुरु यूसुफ, यानी साहिबजादे वालिद के इस शदीद गमो अंदोह और इस पर सब्र जमील को देख कर कहने लगे कि बखुदा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमेशा याद ही करते रहेंगे, यहां तक कि आप बीमार पड़ जाएं और हलाक होने वालों में दाखिल हो जाएं। आखिर हर सदमे और गम की कोई इंतहा होती है, मरूर अय्याम से इंसान उसको भूल जाता है, यानी दिनों के गुजर जाने से, मरूर गुजरगाह को ठीक है, तो दिनों के गुजर जाने से ना इंसान सदमे और गम को भूल ही जाता है, मगर आप इतना तवील अरसे गुजरने के बाद भी इसी रोजे अव्वल में हैं और आपका गम उसी तरह से ताजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना एक और, चूंकि साजिश ने पहले इस बात को छेड़ा है कि जो रैशनल एक्सप्लेनेशंस हैं तो वो इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटीज का आजकल है, बल्कि आजकल तो क्या, पहले भी बहुत बेहतर नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा जो है वो हालात खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रैशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो कुरान मजीद की जो आप दे रहे हैं या पूरे पूरे दीन की दे रहे हैं ना, तो बजाहिर तो बहुत जबरदस्त बात लगती है और दीन गालिब आ जाने वाली बात लगती है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम इट। इतना भोले बनने की, भोले बादशाह बनने की जरूरत नहीं है कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्या कहते हैं लगामे हुकूमत है ना, ये जो सारे डिसीशंस दिए जाते हैं ना कि भी तालीमी निजाम में क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, राइट, ये जो कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल जो है वो मुत्तकी परहेजगार लोगों के हाथ में नहीं है इस वक्त। ठीक है, मुत्तकी परहेजगार लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो वाई देन वी शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, हमें ये सवाल करना चाहिए कि ये जो इतना दीन दीन खेला जा रहा है पिट्टू पिट्टू की तरीके से, जो इतना ज्यादा दीन दीन जो खेला जा रहा है ना, और दीन के लिए जो है वो माशाल्लाह सब कुछ शरिया कंप्लाइंट होता चला जा रहा है आजकल, आज तो पता चला, बता देंगे नहीं बताएंगे, बच्चा तो नहीं है कोई, कि मदर्स मिल्क का बैंक जो है ना, मदर्स मिल्क वो बैंक जो है वो कराची के एक सरकारी अस्पताल में बना दिया गया है। ठीक है, और वो जो मिल्क बैंक बनाया गया है और अखबारों के अंदर खबरें भरी हुई हैं इसकी, ठीक है, तो वो जो मदर्स मिल्क बैंक है तो उससे जो है ना वो जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे अस्पताल के अंदर, तो उनको जो है वो औरतों का दूध जो है पिलाया जाएगा, क्योंकि डब्बे का दूध जो होता है वो तो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, राइट, डब्बे का दूध तो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो औरत का दूध जो है वो पाकिस्तानी बच्चों को जो है पिलाया जाएगा, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो ज्यादा तंदुरुस्त तवाना होकर के बाहर निकलेगी और ज्यादा से जाहिर सी बात है फिर दीन की ज्यादा अच्छी खिदमत करेगी, है मोमिन कवियुन, मोमिन कवि बन करके निकलेंगे ना, तो दीन की ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकेंगे ना, इस वजह से डब्बे का दूध क्यों पिलाएं उनको। अमरीका के अंदर तो ये बहुत पहले से चल रहा था कि अगर मदर्स मिल्क जो है वो सफिशेंट नहीं है तो वो पीछे पड़ जाते पेरेंट्स के, कि नहीं आप इसको डब्बे का दूध नहीं दे सकते, बल्कि हमारे पास मौजूद है ना, बैंक्स के अंदर मौजूद है ना, आप वो क्यों नहीं पिलाते अपने बच्चे को, तो लड़ना पड़ता है कि नहीं हम किसी दूसरी औरत का दूध नहीं पिला सकते अपने बच्चे को। अब जो है वो मुमलकत खुदादाद के अंदर भी, लेकिन साथ साथ ये भी मौजूद है कि इट विल ऑल बी शरिया कंप्लाइंट, है ना, यानी शरीयत का उसमें ख्याल रखा जाएगा। क्या मतलब कि जी जो है ना वो जिसका मिल्क मिलेगा तो वो डेटाबेस के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी, ताकि जो है ना वो उसकी किसी और औलाद के साथ जो है वो बड़े होने के बाद शादी ना हो सके, क्योंकि रजाई बहन भाई बन गए ना, ये शरीयत का प्रिंसिपल है कि रजाई बहन भाई के साथ जो है वो शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता। तो जब 30 साल के बाद या 25 साल के बाद इस बच्चे को निकाह की जरूरत पेश आएगी, तो उस वक्त जो है ना वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो आपकी सारी की सारी चीजें मौजूद होंगी वो आप कैलकुलेट करके बता देंगी कि भाई नहीं जी ये फलाने से इसका निकाह, इसका जो है ना वो रिश्ता तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो इसका रजाई भाई है इस लड़की का, ये तो उसकी रजाई बहन है इस लड़के की, शरिया कंप्लायंस, हाउ गुड इट इज, कितनी अच्छी बात है, शरिया कंप्लायंस का कितना ख्याल रखा जा रहा है। हर्ज ही क्या है फिर, क्या हर्ज है इसके अंदर, पहले जमाने में भी तो होता था कि कोई दाइया जो है अगर की पिला दिया करती थी, तो अब अगर जो है वो साइंसी तरीकों के ऊपर अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है तो हर्ज क्या है, कितना अच्छा लगता है ना, और लोग बहुत खुश हैं इसके ऊपर, शरिया कंप्लायंस के ऊपर, और जो है ना वो यानी साइंस और शरिया कंप्लायंस साथ साथ, वाह 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 क्या बात है, दीन दुनिया साथ साथ, है ना, मौलवियों ने, और वो भी सब मौलवी ने नहीं बल्कि कुछ जो है ना बिल्कुल एक खोसट किस्म के जो मौलवी हैं उन्होंने जो है ना वो मुसीबत पैदा करी हुई है, हर चीज के पीछे पड़ जाते हैं खाम मकाम में, वरना तो आजकल भी बड़े अच्छे अच्छे रोशन ख्याल किस्म के जबरदस्त किस्म के मौलवी बड़ी तेजी से जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अकल के नाखून जो है ना वो बस कहीं गुम हो गए, कि पीछे देखो कि किसके कंट्रोल में ये सारा काम हो रहा है, किसके ऑर्डर्स के ऊपर सारा काम हो रहा है? नहीं, वो कौन देखता है, उसकी क्या जरूरत है देखने की? ठीक है ना, सामने सामने से तो अच्छा ही हो रहा है ना, तो बस अच्छा गुमान रखना चाहिए, बदगुमान ही नहीं करनी चाहिए भाई, बदगुमान ही नहीं करनी चाहिए ना, अच्छा गुमान रखना चाहिए बस। ठीक है, आप रखें अच्छा गुमान सबके साथ, सवाए अपनों के, सवाए अपनों के, सबके साथ अच्छा गुमान रखो तुम, ठीक है ना? यही उसूल है असल में। जिनको अच्छी तरह से जानते हो ना, अंदर बाहर से जानते हो ना, उनके बारे में बदगुमानी करो, और जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है या जिसके बारे में तुम्हें बहुत थोड़ा सा पता है, उसके बारे में खुशगुमानी करो। क्या परफेक्ट जिंदगी गुजारने का उसूल है ये, राइट? है ना कि नहीं है, गलत कह रहा हूं? तो रैशनल थिंकिंग, तो भाई ये भी तो रैशनल थिंक, रैशनल बात कर रहे हैं अपने तफसीर के अंदर। तो भाई ये इन्होंने किताब में लिख दिया इस बात, लेकिन किताब जो दीन की किताब होती है ना, उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है, उसका एक माहौल होता है, उसके लिए एक जो है ना वो उस्ताद की एक पीछे से बैकग्राउंड होता है कि वो किस किस्म का उस्ताद है। जो हर एरा गैरा नथु गैरा उठा के, अब मैं तो खैर हूँ एरा गैरा नथु गैरा, लेकिन क्या उसूलन जो है वो ऐसा होता है कि तफसीर जो है वो कोई भी उठा करके पढ़ाना शुरू कर दे? यानी ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने चूंकि रैशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो अपनी किताब में लिख दी है, तो दैट मीन्स ही इज एनकरेजिंग कि भाई हर बंदा जो है ना, चाहे जैसा भी हो, वो जो है वो रैशनल आर्ग्यूमेंट जो है वो पढ़े और उसके मुताबिक जो है दीन को जो है वो रैशनली जज करे या रैशनली एक्सप्लेन करे दीन को, चाहे जैसा भी हो वो बंदा। क्योंकि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने किताब में लिख दिया है, इस वजह से दैट्स व्हाट ही वांटेड टू। तो फिर यूनिवर्सिटी वाले अगर ये काम करें तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, हजरत ने किताब में लिख दिया है, लेकिन किताब को पढ़ाने का एक अदब है, तमीज है, माहौल है, और उस्ताद सबसे ज्यादा अहम होता है कि कौन सा उस्ताद पढ़ा रहा है और किस किस किस्म की ऑडियंस को पढ़ा रहा है। आर दे इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट? आर दे इवन रेडी फॉर दिस नॉलेज? राइट? तो खाली किताब के अंदर कोई चीज, भाई किताब के अंदर तो सारे के सारे उलूम मौजूद है, राइट? हर लेवल का इल्म जो है वो किताब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्मत की खासियत में से एक खासियत ये भी है कि ये उम्मत किताबें लिखेगी, तो उम्मत ने किताबें अगर सारी की सारी लिख दी है, तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा जो है वो उस किताब को पढ़ने के काबिल भी हो गया, हर बंदा उसको डाइजेस्ट भी कर सकता है, हर बंदा उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना? तो इस बात को भी क्लियर रखिएगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे रैशनल थिंकिंग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया तो आप आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या क्या गलत है अगर वो रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो कालू तल्लाही तस्तऊ तस्कुरु यूसुफ, यानी साहिबजादे वालिद के इस शदीद गम दो अच्छे तुम पढ़ चुके हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साहिबजादों की बात सुनकर फरमाया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, यानी मैं तो अपनी फरियाद और रंज गम का इजहार तुमसे या किसी दूसरे से नहीं करता, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहु की जात से करता हूँ, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और साथ ही ये भी जाहिर फरमाया कि मेरा ये याद करना खाली ना जाए, मैं अपने अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज जानता हूं जिसकी तुमको खबर नहीं। यानी अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया हुआ है कि वो फिर मुझे इन सब से मिलाएंगे। तो आगे फरमाया था ना, वो आलमु मिन अल्लाही मा ला तालम, या बनिया इज़हबू फतखससू मिन यूसुफ व अखी, कि ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि उसकी रहमत से बजुस काफिरों के कोई मायूस नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस मायूस होना जो है ये, यानी मायूसी कुफ्र, ठीक है, और काफिर ही जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होता है। तो इनको इल्म था, याद भी था कि भाई वो ख्वाब वगैरह भी जो है वो सच्चा ख्वाब यूसुफ ने देखा था और मैंने ही उसकी ताबीर उसको बताई थी, तो ये सब कुछ तो होना है। अब वक्त का जो है वो तायुन नहीं था, इनको नहीं पता था कि कब होना है। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सारे फितनों का बता दिया, जितने फितने दुनिया के अंदर होने थे और होने हैं अभी भी, तो उन सब का नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर हमें बता दिया है। लेकिन वक्त का तायुन नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नहीं बताया, तो इन अहदीस के अंदर वक्त का तायुन नहीं है। अब जो है वो बड़े बड़े जो उलमाए कराम, उन्होंने जो बात करी फितरों के ऊपर, तो किसी ने कोई वक्त बताया, किसी ने कोई वक्त का जो है वो मतलब इहतमाली दर्जे में, किसी ने कहा जी फलाना फितना जो है ना वो चंगेज खान वाला जो फितना था वो ये वाला फितना था, ठीक है। फिर किसी और ने कहा कि नहीं, ये आखिरी दौर में जब ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले होंगे ना, ये दरअसल चंगेज खान के जमाने वाला फितना नहीं है, बल्कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के करीब का जमाना होगा जिसके अंदर ये वाला फितना आएगा। तो वक्त का तायुन नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, अल्लाह ताला ने जो बताया वो उम्मत को बता दिया ना, जो जो उम्मत को बताने के लिए नहीं बताया वो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, ठीक है। बहुत सी चीजें नबी अलैहिस्सलाम को बताई, आगे उम्मत को बताने के लिए उन्होंने बता दी सारी की सारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कि बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान नहीं, किसी को नहीं बताया, ठीक है ना। जैसे कि मुतशब्बिहात, क्या कहते हैं, मुतशब्बिहात, और जो है वो हुरूफ मुक़त्तआत के जो मानी हैं कुछ सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, आगे मना कर दिया, आगे किसी को नहीं बताना है, तो आपसे सन नहीं बताया। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी नहीं बताया, ठीक है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतने अरसे के बाद साहिबजादों को यह हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो और उनके मिलने से मायूस ना हो। इससे पहले कभी इस तरह का हुक्म नहीं दिया था, 40 साल कम से कम तो इंतजार किया ना इस हुक्म को देने में। ये सब चीजें तकदीर इलाही की ताबे थी, इससे पहले मिलना मुकद्दर नहीं था, इसलिए ऐसा कोई काम भी नहीं किया गया। और अब मुलाकात का वक्त आ चुका था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके मुनासिब तदबीर दिल में डाल दी, ठीक है। अब देखिए तकदीर का जो मामला है ना, ये इंसानों की गुमराही का एक बहुत बड़ा सबब बन जाता है, बहुत बड़ा सबब। हत्ता कि गालिबन मैंने पिछले दिनों ये हदीस पढ़ी है तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं ना वो तकदीर की वजह से उम्मत के अंदर गुमराह होंगे। अब अगर हम कुरान मजीद के साथ सही मानों में जुड़ करके रहे ना, और कुरान मजीद की इन बातों को सिर्फ ये नहीं कि भाई क्लास लॉग इन करी और फिर उसके बाद बैठ गए और फिर उसके बाद जो है वो क्लास खत्म हो गई और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, नहीं, बल्कि बहुत तवज्जो के साथ इन बातों को सुने, इनको पढ़ें और इनको रिलेट करें अपने जहन की सोचों के साथ, रिलेट करें अगर, तो इस गुमराही में फिर इंसान नहीं पड़ सकता। तकदीर की वजह से जो गुमराही में, यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कितने लोग इस कंफ्यूजन में मुब्तला होते हैं कि जब ऐसा तो फिर वैसा क्यों, जब वैसा तो फिर ऐसा क्यों, जब अल्लाह ताला जो है वो हर चीज को जानने वाले हैं, अल्लाह ताला को हर चीज का पता है, तो फिर ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया और जो है वो ये क्यों होता है। भाई एक से एक सवाल मैं क्या बताऊं आपसे, इतने कम एक्सपोजर के बावजूद इस फकीर के सामने जो है ना, यानी मैं क्या घर में बैठा हुआ जो है बस सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम, राइट। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के फिर भी सवालों से एक्सपोजर मिलता है कि आप परेशान हो जाए उन सवालों से, ठीक है। तो फिर जो मशायख पूरी दुनिया में ट्रैवल करके कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी के से मुलाकात हो रही है, और यानी जिनके रोज और शब जो है वो लोगों से मुलाकातों में गुजरते हैं, उनके सामने कितना कुछ जो है वो एक्सपोज होता होगा लोगों के जो है ना वो कंफ्यूजन के बारे में, लोगों के यानी मिसअंडरस्टैंडिंग और गुमराही के बारे में, कितना ज्यादा उनको एक्सपोजर होता होगा। जब मेरा इतना ज्यादा एक्सपोजर जो है वो कुछ ना करने के बावजूद हो गया, ठीक है। तो ये जो तकदीर का मामला है ना, ये बड़े लोग जो है वो उसकी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जाहिर सी बात है किसी वजह से फरमाया। देखिए कुरान मजीद को अगर सही तवज्जो के साथ सुनेंगे और इन चीजों को जो है ना वो पे अटेंशन करेंगे ना इनके ऊपर, तो क्लियर हो जाएगा मामला। भाई अल्लाह की पसंद है ये कि सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह ताला ने निजाम चलाया है, पहली बात अल्लाह की पसंद, हसीनों को हर बात सजती है, राइट। जैसे कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, एक बड़ी गंदी सी मिसाल है, बड़ी छोटी सी मिसाल है, लेकिन बात समझाने की खातिर खाली दे रहे हैं। किसी ने जो है ना वो ड्रामा राइटर है, ठीक है ना, उसने जो है वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया है, सब कुछ उसको पता है कि ड्रामे में आगे क्या होना है, उसने क्या कहना है, फिर उसने उसको क्या करना है, फिर उसने उसके बाद जो है वो क्या रिएक्शन करना है, सब कुछ पता है उसको, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद जब वो ड्रामा जो है वो स्टेज के ऊपर प्ले हो रहा होता है, तो अब वो फिर भी जानने के बावजूद बैठ करके उस ड्रामे को एंजॉय कर रहा होता है, देख रहा होता है उस ड्रामे को, ठीक है ना। हालांकि उसको सब कुछ पता है, तो भाई ही इज द राइटर, ही इज द इंचार्ज, है ना। अब वो जो है वो बैठ करके एंजॉय कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है, करने दो भाई उसको एंजॉय। तो ये तो दुनिया की मखलूक और एक आम इंसान की मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसने ये पूरा का पूरा ड्रामा बनाया और पता है उसको कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, लेकिन ही स्टिल उसको खुशी होती है। ईमान वाला जो है जब उसकी तारीफ कर रहा होता है, उसका शुक्र अदा कर रहा होता है, राइट, अल्लाह ताला को खुशी हो रही होती है। कोई पूछे क्यों खुशी हो रही होती है भाई, जब सब कुछ पहले से पता है, क्यों खुशी हो रही है अल्लाह ताला को, राइट। और अल्लाह ताला को अजियत हो रही होती है, मिश्कात शरीफ की हदीस बिल्कुल शुरू के अंदर ही, जब अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में कोई करता है ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी, उसी तरह का एक मजमून है हदीस मुबारक का, अल्लाह ताला को अजियत हो रही होती है, फिजिकल अजियत नहीं हो रही होती, ठीक है ना। जैसे एक बाप को भी जो है वो अजियत हो रही होती है ना, कि भाई औलाद जो है वो उसके एहसान फरामोशी कर रही है, तो अल्लाह ताला को अपने बंदों के एहसान फरामोशी के ऊपर जो है वो अजियत हो रही होती है। अब कोई पूछे क्यों अजियत हो रही है, अल्लाह को तो पता है कि इसने ये काम करना है, क्यों हो रही है भाई अजियत, तो भाई अल्लाह की मर्जी हो रही है उसको अजियत, तुम्हें क्या तकलीफ है। और दूसरी बात यह है जो कि यानी हसीन उसको और बात सच दिए वाला आर्ग्यूमेंट तो ये था, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, कि भाई आप क्यों चाहते हैं किसी ऐसी हस्ती को अपना खुदा बनाना जिसको पता ही कुछ नहीं कि आगे क्या होने वाला है, राइट। क्यों चाहते हैं ऐसा खुदा कि जिसको कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, अल्लाह के बंदे यानी खुदा तो है ही वो ना, कि जिसको के आगे का पता है कि क्या होने वाला है, जिसको पता ही कोई नहीं, तो उसको तुम खुदा क्यों माने माने के चक्कर में रहते हो। और माजी का तो इल्म बहुत सारे इंसानों को भी हो जाता है ना, हिस्ट्री की आप जो है वो आप उठा करके रिसर्च करना शुरू करना, आपको माजी का बहुत कुछ पता, हाल का हमें पता अभी क्या हो रहा है, अभी क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी खबरें आपको मिल रही हैं कि जी वहां गजा में क्या हो रहा है, और अमरीका में क्या हो रहा है, और इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मसला तो सारा का सारा जाके फंसता है मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल का तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अल्लाह को भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह को पता हो गया तो गोया क्या ना, कि ये तो मैं क्या कहते हैं वो हमारे यहाँ कहते हैं बचपन बेमानती हो गई बेमानती कहते थे ना, बेईमानी, बेमानती नाउजुबिल्लाह, ये तो जो है ना वो फाउल प्ले है, कि भाई पहले से आपको क्यों पता है सब कुछ आखिर का आगे क्या होने वाला है। भाई अल्लाह को तो पता है आगे का, अल्लाह तो अल्लाह है ही, अल्लाह की तो ये सिफात में से एक बुनियादी सिफत है, अलीम और आलिमुल गैब, यानी जो चीज अभी हाजिर में जो चीज मौजूद नहीं है उसका इल्म रखने वाला वो अल्लाह ताला है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और आप में से भी कुछ हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होता है, किसी ने मुझसे सवाल भी किया था, मैं उनको जवाब नहीं दे सका, ठीक है, कोई है, बात ऐसी आ गई, तो आज उम्मीद है कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी बहुत सारे हैं जो कि इस किस्म के सवाल, या तो बिजी लोग होते हैं, सवाल वाल करने का टाइम ही होता यानी, लेकिन जो फारिग होते हैं ना वो फिर इसी किस्म के सोचे सोच रहे होते हैं। तो कुरान अजीम शान, ये एक इतनी बड़ी रिसोर्स हमारे पास है कि इस के साथ जुड़ने से इंसान का ईमान महफूज हो जाता है। जब भी हमारे मशायख जो पांच कहफ कहते हैं ना ईमान की हिफाजत के लिए, उनमें से एक कहफ क्या है, दर्स कुरान के हल्के, अहले हक के दर्स कुरान के हल्के, ये कहफों में से एक कहफ है। लेकिन जिस तरह से मदीना मुनव्वरा ईमान की हिफाजत के लिए काफी नहीं होगा उन लोगों के जो कि मुनाफिकत के शिकार होंगे, वो मदीना मुनव्वरा जाकर के भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, यानी उनका ईमान महफूज नहीं होगा, क्योंकि वो तो निफाक का शिकार थे, ठीक है। तो इसी वजह से दज्जाल के आने के वक्त जब जल्जला का झटका आएगा, भाग जाएंगे सारे के सारे मदीना मुनव्वरा से, और दज्जाल की तरफ भागेंगे सारे के सारे, ठीक है। उसी तरीके से दरसो कुरान में बैठे हुए तो हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से बैठे हुए, या बैठ करके जो है ना वो इधर उधर की जो है वो चीजों में अपना दिमाग लगाया हुआ है, और जो है वो कुछ और दिमाग में चल रहा है, या तो बदगुमानी चल रही है, या कोई और फिक्रें चल रही हैं, तो फिर दरसो कुरान में होने का भी फायदा नहीं। तो हर चीज के कुछ तकाजे होते हैं, फायदा उठाने के लिए तकाजे होते हैं, उन तकाजों को हम मीट करेंगे तब हम जो है ना वो दरसो कुरान से भी फायदा उठा सकेंगे, और हरमैन शरीफेन से भी फायदा उठा सकेंगे, और मदारिस अरबिया से भी फायदा उठा सकेंगे, और खानकाहों से भी फायदा उठा सकेंगे, और तबलीगी जमात से भी फायदा उठा सकेंगे। अगर तकाजों को पूरा नहीं करते फिर कहीं से भी फायदे उठा सकेंगे। ठीक है, बस ये एक पैराग्राफ करके आज की क्लास खत्म करते हैं। ये फरमाते हैं कि और दोनों की तराश का रुख मिस्र ही की तरफ। अच्छा, ये पूरा नहीं पढ़ा था हमें। याकूब अलैहिस्सलाम ने इतने अरसे के बाद साहिबजादों को हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो, उनकी मेहनत से मायूस ना हो। इससे पहले कभी इस तरह का हुक्म नहीं दिया था। ये सब चीजें तकदीर इलाही किताबें थी। इससे पहले मिलना मकदूर मुकद्दर नहीं था, इसलिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया गया। और अब मुलाकात का वक्त आ चुका था, इसलिए अल्लाह तआला ने उनके मुनासिब तदबीर दिल में डाल दी। और दोनों की तलाश का रुख मिस्र ही की तरफ करार दिया, जो बुनियामीन के हक में तो मालूम और मुतय्यन था कि मिस्र में ही है बुनियामीन, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में तलाश करने की जाहिर हाल के एतबार से कोई वजह नहीं थी, है ना। वो दूसरी तरफ लीबिया की तरफ भी हो सकते थे, वो फलस्तीन की तरफ भी हो सकते थे, वो इराक की तरफ भी हो सकते थे, हिजाज की तरफ भी हो सकते थे, लेकिन खास मिस्र की तरफ जाने के लिए कहा। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो उसके मुनासिब असबाब जमा फरमाते हैं। इसलिए इस मरतबा तलाश तफ्तीश के लिए फिर साहिबजादों को मिस्र जाने की हिदायत फरमाई। बाज हजरात ने फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम को पहली मरतबा अजीज मिस्र के इस मामले से कि उनकी पूंजी भी उनके सामान में वापस कर दी, इस तरफ ख्याल हो गया था कि ये अजीज कोई बहुत ही शरीफ और करीम है, शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम ही। ठीक है, तो ये भी एहतमाली दर्जे में हो सकता है कि उनको पहले से एक अंदाजा हो गया होगा कि शायद वो मेरा यूसुफ ही हो जिसने कि इतना बड़ा काम किया है नेक का। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने इतना वक्त दिया, 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, पर आपके आने को कबूल फरमाए और इस पढ़े को हम सब के हक में फायदेमंद बनाए और हमारी मकबूलियत का सबब बनाए। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।